الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. اب یہ بھی ایسی کوالٹیز بتائی گئی ہیں، اسی کی آگے کنٹینیویشن ہے کہ وہ جو مختال اور فخور ہے وہ پھر بخل بھی کرتے ہیں. اور بخل کیا ہے؟ حقدار کو جہاں پہ خرچ کرنا ہے نا آپ نے، وہاں پہ نہ خرچ کرنا. جو حق ہے کسی کا آپ وہاں پہ خرچ کریں، چاہے وہ غریب ہے، مسکین ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہیں، چاہے کچھ ہے، وہاں پہ بخیلی کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں بخیلی سے بچو، تمہارے سے پہلے لوگ اس کی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے، اس وجہ سے وہ قطع رحمی کرتے تھے، فسق و فجور کے کام کرتے تھے، یہ بخیلی کی وجہ سے. تو بخل بخیل جب ہوگا وہ قطع رحمی کرے گا، رشتہ داروں پہ خرچ کرنا پڑتا ہے، ان سے بچاؤ. تو اور بخل صرف مال میں نہیں ہوتا، بخل انسان کی کوئی بھی جو اللہ نے اس کو نعمت دی اس میں بخل ہو سکتا ہے. اگر آپ کو کوئی صلاحیت دی ہوئی ہے، کوئی آپ کو علم دیا ہوا ہے، کوئی آپ کو کوئی ہنر ایسا اچھا آتا ہے، تو اب آپ کہتے ہیں کہ کسی اور کو نہ پتا چل جائے، کوئی اور نہ جان لے، کیونکہ اگر کسی اور کو بھی پتا چل گیا تو پھر میری کیا ویلیو رہے گی. تو وہ بخل کرتا ہے، اس کو نہ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، کسی پہ اسپرینڈ نہیں کرنا چاہتا. تو علم بھی اگر میں نے علم دوسروں کو دے دیا تو ان کو بھی پتا چل جائے گا، اس لیے اس کا بھی بخل کرنا. تو کوئی بھی چیز کا بخل ہو سکتا ہے، بخل میں صرف مال نہیں ہے، جس سے بھی لوگوں کو فائدہ مل سکتا ہے میں کیوں وہ چیز دوں. بعض لوگ اتنے بخیل ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ بات بھی کسی کو نہ بتاؤ کہ ہم نے یہ چیز کہاں سے لی ہے، یا ہمیں کہیں سے فائدہ ملا ہوا ہے، یا ہم کہیں سے کوئی کام کرواتے ہیں، یا ہمیں کوئی بھی اچھی فائدے کی چیز جو ہمیں ملی ہوئی نا وہ نہ کسی کو بتانا. یہی آگے بات آ رہی ہے، وہ یامرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی کہتے ہیں تم بھی نہ بتانا ورنہ سارے ہی وہاں سے چلے جائیں گے اور سب کو ہی فائدہ مل جائے گا. تو کسی کو نہ فائدہ ملے، اس لیے اپنے پاس ہی اس چیز کو رکھو. آج کل عورتیں بھی تو بہت ساری یہ اسی چیز میں مبتلا ہے نا، کہ جو یہ میں تمہیں بات بتا رہی ہوں نا ریسیپی، یہ کسی کو نہ بتانا، ساروں نے ہی بنانی شروع کر دینی. تو خود بھی کنجوس بخیل اور دوسروں کو بھی اسی کی تلقین کرتے ہیں بخیلی کی. بخیل اللہ سے دور ہوتا ہے پتہ، سخی جو ہے نا وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، بخیل دور ہوتا ہے، بخیل انسان شیطان کے قریب ہی ہوتا ہے. تو دوسروں کے فائدے کو ان کے لیے اویلیبل کرنا ہے، یہ ہے سخاوت. اور دوسروں کا جس میں فائدہ ہے ان سے روک لینا، یہ ہے بخل. یہودی بہت بخیل ہوا کرتے تھے، مگر صرف ان کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ، جو بھی بخل کرے گا وہ اس کے اندر آ جاتا ہے. تو لوگوں کو بھی بخل کا کہتے ہیں، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِ، اور چھپاتے ہیں جو اللہ نے عطا کیا ہوا ہے اپنے فضل سے. چھپاتے کس نے کہ دینا پڑے گا، چھپاؤ لوگ کسی کو پتہ ہی نہ چلے. فضل جو ہے نا اللہ نے جو حق سے بھی زیادہ دیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی نعمت جو ہے وہ ہمارا حق نہیں ہے، اللہ کا فضل ہی ہے، تو اس کو بھی چھپاتے ہیں. بعض لوگ تو اتنے بخیل ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ پہ بھی خرچ نہیں کرتے، بعض اپنے گھر والوں پہ خرچ نہیں کرتے، اتنے بخیل ہوتے ہیں. تو بخل دل کی تنگی کو کہتے ہیں. اب وہ جو اپنے آپ پہ خرچ نہیں کرتے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی حدیث ہے نا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جو اس نے فضل کیا ہوا ہے کسی پہ، وہ چاہتا ہے کہ وہ انسان اس کو ظاہر کرے، یعنی اس کو اپنے اوپر سپینڈ کرے، اب دکھاوے کے لیے نہیں، مگر انسان کے اوپر وہ نظر آنی چاہیے اللہ کی نعمت. یہ نہیں کہ اپنے اتنا فقیرانہ بالکل اپنا حلیہ بنایا ہوا ہے، کیونکہ ہم نیک بہت ہیں تو ہم اتنے فقیر بن کے رہتے ہیں، ہم تو کچھ خریدتے بھی نہیں ہیں، نہ ہمارے گھر میں پلیٹ ہے نہ جگ ہے، کیونکہ بالکل ہم بس فقیروں کی طرح رہتے ہیں، بستر بھی نہیں خریدا ہوا. اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دیا ہوا تو کوئی حرج نہیں ہے، حلال سے اگر آپ کے پاس ہے کہ آپ اس سے خرچ کریں اپنے لیے. تو دو فرشتے صبح کے وقت اعلان کرتے نا، ایک کہتا ہے یا اللہ دینے والے کو اور عطا فرما، دوسرا کہتا ہے یا اللہ جس نے روک لیا بخل کیا اللہ اس کا پہلا مال بھی ضائع کر دے. یہ فرشتوں کی بدعا لیتا ہے جو بخیل ہوتا ہے. اور کچھ لوگ اپنے گھروں میں ہی بخیل ہوتے ہیں، وہ جمع کرتے رہیں گے پر گھر والوں پہ نہیں خرچ کرتے، ان کو گن گن کے دیتے ہیں اتنا اتنا کہ بس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء سے فرمایا تھا نا، یہ جب خرچ کرو تو گن گن کے نہ خرچ کیا کرو، اگر تم اس طرح خرچ کرو گے تو اللہ بھی تمہیں گن گن کے دے گا، یعنی اللہ کے راستے میں بے دریغ دو. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. کافروں کے لیے دردنا سوری رسوا کرنے دینے والا عذاب ہے، رسوائی والا، بے عزتی والا، ذلت والا، یہ جو ان کو کافر کہا گیا ہے جو یہ کام کرتے ہیں، مختالاً فخورا، بخل کرتے ہیں. اور ہماری اکڑیں دیکھیں جب، اچھا ایک اور جگہ بھی ہماری اکڑ بہت زیادہ ہوتی ہے، کون سی جگہ؟ جب ہم لڑکے والے بن جاتے ہیں نا، پھر ہماری اکڑیں دیکھا کریں کتنی ہوتی ہیں، کیونکہ ہم لڑکے والے ہیں تو ہماری بہت اکڑ ہے. اور یہاں پھر کسی ایسے جگہ پہ جائیں جہاں پہ دوسرے بیچاروں کے پاس اتنی وہ فیسلٹیز نہیں ہوتی، پھر اکڑ دیکھیں. یہاں پھر بعض دفعہ جو باہر کے ملکوں میں رہنے والے ہوتے ہیں، ویسٹ میں خاص طور پہ، وہ جب اپنے ملکوں میں جاتے ہیں پھر ان کی اکڑ اور فخر دکھا کریں کہ وہ لوگوں پہ کس طرح اکڑ اور فخر جتاتے ہیں کہ ہم تو پتہ نہیں جنت سے ہی اتر کے آئے ہیں آج، تو اب آپ لوگ تو ہمارے سامنے کیڑے مکوڑے ہی ہو کیونکہ آپ یہاں پہ رہتے ہو اس تھرڈ ورلڈ کنٹری میں. پھر اپنی مختالن فخورہ وہاں پہ دیکھا کریں کیسا ہوتا ہے، پھر جب ہم براتے ہیں لے کے جاتے ہیں پھر دیکھا کریں مختالن فخورہ کیسا ہوتا ہے. پھر تو کہتے ہیں کہ آج لڑکی والوں کو سانس بھی نہیں لینی چاہیے، بس ہمارے ہی پیر قدموں میں آ کے بیٹھ جائیں، پھر مختالن فخورہ ہم کیسے ہوتے ہیں. یہ تھوڑی سی اگزامپلز ہیں ہماری، ذرا چیک تو کریں اپنی زندگیاں کدھر کدھر مختالن فخورہ بنے پھرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں آج ہی تمہارے اندر بہت زیادہ ہے. وہ موقع دیکھا کریں، جب ہمیں موقع ملتا ہے تو پھر ہم کرتے کیا. ہاں موقع نہ ملا ہو، ہمارے اوپر ہی کوئی اور لوگ سوار ہوں جو کہ ہم سے زیادہ بڑے ہیں، تو پھر ہم نے کیا فخر دکھانا ہے. لیکن جہاں پر ہمیں موقع مل جاتا ہے پھر دیکھا کریں کہ ہم بنتے کیا ہیں، پھر دیکھیں کہ مختلف ہو. ظاہر ہے مختلف فخر کیا کریں گے، فخر کریں گے جہاں پہ آپ سے بھی بڑے اسٹیٹس کے کوئی لوگ، امیر لوگ بیٹھے ہوں، بڑے دولت مند ہوں، بڑے وہ، ان میں کیا کریں گے. جہاں پہ ذرا موقع مل جاتا ہے، جہاں ہماری ذرا چلتی ہے، پھر ہمیں دیکھیں کیسے ہم لوگوں کو دباتے ہیں. یہ ہیں گریبان میں جھانکنے والی باتیں. ٹھیک ہے، جو اپنے گریبان میں جھانک لے گا نا تو اچھا رہے گا، اپنے آپ کو فکس کر لے گا. جو ایسے ہی چلتا رہے گا نہیں میرے اندر تو کچھ نہیں ایسا، تو پھر وہ اسی ڈگر پہ چلتا رہے. ٹھیک ہے. والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، پہلے والے تھے وہ خرچ ہی نہیں کرتے تھے، اب وہ جو خرچ کرتے ہیں، چلو خرچ کر لیا لیکن ان کا خرچ بھی کیسا ہے، رئاء الناس، دکھاوے کے لیے. اول تو خرچ ہی نہیں کریں گے، خرچ کریں گے بھی تو ایسی جگہ پہ خرچ کریں گے لوگ تو دیکھیں، پتا تو چلے کہ بھائی یہ اس نے کتنا لگایا، اتنا ڈونیشن دیا ہے. اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ جو ڈر ہے تم سے وہ شرک اصغر کا ہے. تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ شرک اصغر کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا ریا، الریا، دکھاوا. اور آپ کو پتا ہے کہ کن لوگوں کے ساتھ سب سے پہلے جہنم کو بھڑکایا جائے گا؟ کسی کو پتا یہ بات؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. اتنی لمبی حدیث ہے جو میں اب یہاں پہ نہیں بیان کر سکتی کہ کس طرح سے صحابی رسول نے یہ حدیث بیان کی تھی نا، اتنی زبردست ہے یہ. لیکن سب سے پہلے اس عالم سے جس نے دکھاوے کے لیے کیا، یعنی ظاہر ہے اس کا مطلب مسلمان تھا نا، وہ کہتا ہے میں تو یا اللہ میں نے تو لوگوں کو سکھایا، میں تو قرآن پڑھتا تھا، میں تو ایسے کرتا تھا. وہ عالم جو دکھاوے کے لیے اپنا اس نے علم لیا، یا دکھاوے کے لیے قرآن پڑھتا تھا، اس کے لیے کہ لوگ بہت بڑا عالم کہیں، بہت بڑا قاری کہیں، بہت خوبصورت آواز ہے ان کی جی، جیسے یہ قرآن پڑھتی ہیں وہ مزہ آ جاتا ہے سن کے بہت. اب وہ اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا، اس نے اس کے دماغ میں بس ریاکاری آ گئی. لیکن یہ بھی نا ایک، آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بھی ایک بیماری سی بن جاتی ہے. اس لیے یہ آپ کو کہتے ہیں نا کہ لوگوں کی تعریفیں ان کے منہ پہ نہ کیا کریں، ان کے پیچھے کریں ضرور کریں، ان کے منہ پہ نہ کریں. کیوں؟ دیکھیں آج آپ اس کی تعریف کرتے ہیں نا تو ٹھیک ہے وہ خوش ہو جاتا، چلو کل بھی آپ اس کی تعریف کریں پھر وہ خوش ہو گیا، تیسرے دن کسی اور نے کی پھر وہ، چوتھے دن نا وہ ایکسپیکٹ کرنے لگے گا، اس کو امید بن جائے گی، وہ کہے گا آج تو میں نے پڑھا کسی نے تعریف ہی نہیں کی، اب یہ کریں نا تعریف میری. اب اگر وہ نہیں کریں گے نا تو اس کے اندر پھر ان کے لیے بڑے بغض ہو جائے گا، وہ ایکسپیکٹ کرنے لگتا ہے. تو پہلے لوگ اس کو چڑھا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اب وہ ریاکاری اور کرنے لگتا ہے. تو اب پہلے اس نے شروع میں نہیں ریاکاری کے لیے کیا تھا، اس نے واقعی جینوئن اپنے اس سے دل سے کیا، اب مگر اس کے اندر ریاکاری آ گئی. اب اس کو یہ ہے کہ مجھے تو وہاں پہ بھی تعریف ہوئی تھی، اب میں یہاں پہ بھی جا کے، مجھے بولنے دے، مجھے کرنے دے، میں تو جو تقریر کروں گی، میں درس دوں گی، میں لیکچر دوں گی، میں قرآن پڑھ کے سناؤں گی، کیونکہ اب پتہ ہے یہاں پہ بھی تعریف ہوگی. ये फिर एक इंसान की आदत बन जाती है कि मुझे लोग तारीफें करें, अब मैं दिखावा करूं। तो ये जो शोहरत की चाहत, ये जो दिखावा, ये जो ये चीजें ना, ये सोचें कि वो आलिम है लेकिन सबसे पहले जहन्नुम उससे भड़काई जाएगी। इतना रोए हैं सहाबी रसूल इसके से कि वो तो, अब मैं किसी वक्त वक्त हुआ तो इंशाल्लाह आपको बताऊंगी कि कितना वो रोए थे इस बारे में। बड़ी खूबसूरत यह हदीस है। दूसरा, वो जो शहीद हुआ अल्लाह के रास्ते में, लेकिन उसने अपनी जान दी थी, और लोग मुझे कहें कि ये बड़ी बड़ा बहादुर था, रिहाकारी। तीसरा, वो जो सखी था, किसी को देता था तो इसलिए लोग डोनेशन दे रहे हैं, बड़े बड़े चेक काट रहे हैं, लोग अनाउंस कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि मेरा भी अनाउंस किया जाए यहाँ पे, मेरा नाम, मेरी तख्ती यहाँ पे लगाई जाए मेरे नाम की, कि इन्होंने ये बना के दिया है। ये तो ये रिहा है। अब इसके बारे में क्या है, मुसनद अहमद की एक हदीस आती है कि एक आदमी ने सवाल किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि उसके बारे में बताएं जिसने जिहाद किया। असल में उसने अजर के लिए किया और साथ ही उसकी ये भी ख्वाहिश थी कि जरा सी शोहरत भी हो जाए, चलो लोगों को भी तो पता चल जाए, ठीक है मुझे अजर भी मिल जाए, मैं अजर के लिए कर रहा हूं, लेकिन देखिए अगर लोगों को पता ही ना चले तो फिर क्या फायदा ना, मेरी तहज्जुदों का ना, मिसाल के तौर पे दे रही, मेरी तहज्जुदों का ना पता चले लोगों को, क्या फिर मतलब किसी को भी ना पता चले, तो कोई तो एप्रिसिएशन होनी चाहिए ना मुझे इसके ऊपर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, क्या आप क्या सोचते हैं क्या फरमाया होगा? आप सोचते हैं कि आपने फरमाया होगा कि आप फिर उसको हाफ अजर मिलेगा, क्योंकि हाफ उसकी नीयत अल्लाह के लिए थी, हाफ उसकी नीयत शोहरत के लिए थी। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने फरमाया उसके लिए कुछ भी नहीं है, उसके लिए कुछ भी नहीं है, उसके लिए कुछ भी नहीं है, 3 दफा ये फरमाया, 3 दफा। यानी अल्लाह ताला वो अमल कबूल ही नहीं करता जो जिसमें नीयत में जरा भी कोई और चीज भी शामिल हो जाए, अल्लाह सिर्फ खालिस अमल कबूल करता है। इस बात से इतना मुझे डर लगता है कि मैं सोचती हूँ पता नहीं हमारी कोई चीज रह भी गई है कि नहीं। कोई तो अदले के बदले होगा, कईयों में ये हो गया कि अच्छा चलो वो भी देख ले, वो भी देख ले, कईयों में तारीफों की चाहत हो गई, कई कईयों में कुछ हो गया, किसी में कुछ हो गया, चलो सब गया, तो पता नहीं है कि हमारा कोई अमल बचा भी है कि नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने दिखावे के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, जिसने दिखावे का रोजा रखा उसने शिर्क किया, जिसने दिखावे का सदका किया उसने शिर्क किया। ये शिर्क है, वो हम अपने आप को नेक समझे बैठे हो, नमाजें पढ़ रहे हैं, रोजे रख रहे हैं, सदका बहुत मैं करती हूँ, सारा शिर्क हो रहा है। वला यूमिनूना बिल्लाही वला बिल यौमिल आखिर, ना वो अल्लाह पर ईमान रखते और ना वो आखिरत के दिन पे, क्योंकि अगर अल्लाह पे ईमान होता ना तो फिर वो कभी शिर्क ना करता, ऐसा फिर दुआओं के दिखावे के लिए ना करता। इसलिए कि जिसका अल्लाह पे ईमान है उसको तो पता है कि अल्लाह के लिए मैं कर रही हूँ, वो तो देख रहा है। आज हमारी पूरी जिंदगी अगर आप देखें ना, सिर्फ शो ऑफ ही बन गई है, उसको दिखा दें, उसको बता दें, उसको पता चल जाए सर्टिफिकेट मिल रहा है कि नहीं, अप्रिसिएशन हो रही है कि नहीं, स्टेज पे बुलाया जा रहा है कि नहीं, बस पढ़ना भी इसके लिए, बताना भी इसके लिए, टेस्ट भी इसके लिए देने हैं, नंबर कितने आ रहे हैं वो वहां पे लग जाए, ये अनाउंस हो जाए वो हो जाए, क्या रह गई है हमारी फिर नेकी? हम पहनते भी इसलिए कि लोग देखें, तो फिर देखें दुनियावी मामलों में भी ये बुरा है और दीन के मामले में तो वैसे ही शेर के पहनते इसलिए कि लोग तारीफ करें। आज मैं सबसे स्मार्ट लगूं, मैं दुबली पतली किस लिए हो रही है कि लोग कहें कि बस मॉडल लग रही है, घर भी इसलिए सजाते हैं कि लोग बस मेरे घर को आके कहें शानदार घर है आपके, क्या आपकी बड़ी डिजाइनर है आपका, क्या जबरदस्त बात है। शादी ब्याहों पे भी किस लिए खर्चा करते हैं कि लोग वाह वाह करें, भाई मजा आ जाए लोगों को, पता चल जाए लोगों के कोई शादी हुई है, याद करें लोग हमेशा, क्या हमारी जिंदगी है फिर, बस लोगों में हम नुमाया हो जाए, लोग हमारी बातें करें, लोग हमारी तारीफें करें, लोगों की नजरों में हम जज जाए, लोगों में हमारी शोहरत हो जाए, बस ये जिंदगी। या तो हम बोल के बता रहे होते हैं, खुद ही से बताएंगे, नहीं तो फिर कहीं हमारे एक्शन से लोगों को पता चल जाए, हमारे कामों से लोगों को समझ आ जाए क्या बात है इनकी, शादी हो तो ऐसी हो, घर हो तो ऐसा हो, बच्चे भी इसी तरह से करेंगे, बच्चे हों तो ऐसे हों। इसीलिए हम बच्चों को कहते हैं आंटी के सामने ना ये बोलना, वो कहेंगे कैसे बच्चे हैं ये, अरे वो तो हमें ये नहीं परवाह के बुरे एटिकेट्स हैं या इनको हमने कोई अच्छे मैनर्स सिखाने हैं, बेटा ये बद अखलाकी है ऐसे नहीं करते, वो हम क्या कहते हैं, वो आंटी को पता चल जाएगा, आंटी देख लेंगी वो क्या कहेंगी, सब चीजें इसलिए हैं कि बस लोगों में हम अच्छे हो जाएं। तो अल्लाह पे क्या ईमान है फिर? अल्लाह देख रहा है, अल्लाह की नजरों में हम अच्छे हो जाएं, उसकी परवाह ही नहीं, तो फिर क्या ईमान है? तो वो नहीं ईमान रखते अल्लाह पर, नहीं ईमान रखते आखिरत के दिन पर, वरना वो आखिरत के लिए करते, वरना उनको ये पता होता कि आखिरत में मुझे इसका अजर मिल जाना। वो मैं यकुन शैतान लहु करीनन फसा अकरीना, जिसका शैतान ही साथी बन गया तो फिर उसका साथी कितना बुरा है, इसका मतलब है शैतान उसका दोस्त बना रहा है। वो अल्लाह का गुलाम तो नहीं, वो तो शैतान का साथी है। वो शैतान बुखल भी कराता है, रियाकारी पे भी उकसाता है। हर इंसान के साथ दो करीन होते हैं, एक फरिश्ता होता है और एक शैतान होता है। फरिश्ता नेकी के ख्याल डालता है और शैतान बुरे ख्याल डालता है। समझ जाया करें जब बुरा ख्याल आ रहा है कि शैतान अब आया हुआ है मेरे पास मुझे बातें कहने के लिए। वमा दा अलैहिम लौ आमनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, क्या हो जाता इनको, क्या इनका बिगड़ जाता, क्या जाता इनका अगर ये ईमान ले आते अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर। देखिए, इसको ईमान के साथ कहा गया है कि ये बुखल करना, ये छुपाना, लोगों से खैर छुपा लेना, छुपा छुपा के रखना कि जो मुझे फजल मिल गया ना वो किसी और को ना पता चल जाए, लोगों को भी कहना तुम भी ना बताना, उनको भी। हमें देखें कितनी तकलीफ होती, कोई कुछ कर रहा हो ना, कोई काम किसी का, तुम्हें क्या जरूरत है, तुम पागल बनी हुई हो, तुम इतने उनके काम करने लगी हो, बस करो तुम भी ना इतना किया करो, अरे छोड़ो इनको खुद ही कर लेंगे, तुम क्या नौकर बनी हुई हो, तुम क्यों ऐसे कर रही हो, तुम्हें खर्च करने की क्या जरूरत है। अच्छा, हमें कोई इस पे नहीं वो रोकेगा कि हम पार्लर पे कितना खर्च करें, हम शॉपिंग में कितना खर्च करें, मगर हाँ ऐसी जगहों पे कहीं पे खर्च करें तो कहते हैं तुम पागल हो। तो इससे रोकने वाले बहुत होते हैं, क्योंकि वो बखील खुद भी नहीं करता, दूसरों को भी रोकता। तुम क्यों इतना खिला रही हो उनको, तुम क्यों इतनी डिशेस बना रही हो, तुम्हें क्या मुसीबत है, वो तो देखो ये तो इस काबिल नहीं है, इस तरह की बातें करते हैं। अभी मुख्तालन फखूरा, ये सब चीजें, ये मसला कहाँ पे है, ईमान में मसला, ईमान में कमजोरी है। तो अल्लाह ताला फरमाते क्या हो जाता है इनको अगर ये ईमान लाते अल्लाह पर और आखरत के दिन पर, कि अल्लाह तो मेरा देख रहा है, मैं क्या चीज हूँ, मेरे अल्लाह को पता है, मुझे आखरत में इसका अजर मिल जाना है। वो अनफकू मेमा रजा कहूँ अल्लाह, और वो खर्च करते उसमें से जो अल्लाह ने उनको रिस्क दिया, तो क्या हो जाता है इनको, यानी अल्लाह ने एक गिला किया है, शिकवा है अल्लाह का। वकान अल्लाह बिहिम अलीमा, अल्लाह ताला तो जानता है ना जो खर्च करते हो, जो छुपाते हो, जो तुम्हारी असलियत है और फखर किस पे कर रहे हो नहीं वैसे, लेकिन फखर कर करके बता रहे हो। इन अल्लाह ला यज़लिमु मिसकाला दर्रा, क्यों देने से बुखल करते हो, क्यों खर्च नहीं करते, तुम्हें कहा अल्लाह ने क्या बिगड़ जाता इनका अगर ये खर्च करते अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह ने जो रिस्क दिया हुआ, अल्लाह से तुम ये घबराते हो कि हमारा खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। अल्लाह तो किसी के ऊपर जुल्म नहीं करता, जुल्म क्या है, हकदार को उसका हक ना देना, इतना सा भी जुल्म नहीं करता। मिसकाला जर्रा, जर्रा पता है किसको कहते हैं, जो जो चीज अगेन डिवाइड ना हो सके उसको जर्रा कहते हैं। पहले जमानों में देखा आप, राई का दाना लिखा होता था तर्जुमे में, वो राई का दाना ही उनके लिए बहुत छोटी चीज होती थी। अब हमें पता चला, साइंस ने हमें बताया, नहीं एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम है। अब उन्होंने एटम के भी हिस्से कर दिए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ये कर दिए। अब हमें पता चला इससे भी छोटा कोई कोई जर्रा चीज इतनी छोटी भी हो सकती है। तो अब अल्लाह ताला तो इतना, देखो सुभान अल्लाह, अल्लाह ने ना कोई राई के दाने से नहीं मिसाल दी, कोई और चीज है, क्योंकि जर्रा कह के बता दिया। आप अरेबिक डिक्शनरी में देख लें, जर्रा सुभान अल्लाह इसका ये मीनिंग है, दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड, और तकसीम नहीं हो सकता, सुभान अल्लाह। तो रहती दुनिया तक आप निकालते जाओ साइंस से कि सबसे छोटी चीज क्या है, वो जर्रे में आएगी। अल्लाह इतना भी जुल्म नहीं करता कि तुम ये सोच लो कि अल्लाह भूल जाएगा कि तुमने जो नेकी की उसका पता नहीं अजर ही ना मिले। मैं यहाँ पे ही लोगों को दिखा दूं तो यहां से ही तारीफें ले लूं, पता नहीं आखरत आनी भी है कि नहीं, आखरत पर ईमान नहीं है ना। अल्लाह नहीं, अल्लाह भूलेगा नहीं, अल्लाह ताला किसी का किया हुआ, आप सोचते हैं आप वक्त लगाएंगे आपको कुछ नहीं मिलना, अल्लाह ने भूल जाना नाउज बिल्ला, या अल्लाह ताला ने देना ही नहीं इसका अजर, या ये तो बहुत छोटी चीज है इसका क्या अजर मिलेगा, नहीं वहां पे तो जानवरों तक को इंसाफ मिलना है, तुम अपने लिए जुल्म का सोचते हो। बेसींग वाली बकरी, हदीस में आता है बगैर सींग वाली बकरी को उसने, सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली को मारा होगा, तो कयामत के दिन सींग वाली बकरी को अल्लाह ताला उससे सींग छीन लेगा और बेसींग वाली को दे देगा, और अल्लाह ताला फरमाएगा इससे जितना इसने तुझे मारा था उतना तू मार के अपना बदला ले ले। जानवरों का पहले ही दिखाया जाएगा किस लिए, ताकि इंसान होश में आ जाए, उस वक्त समझ आ जाए कि क्या है मेरा अब क्या बनेगा, अगर जानवरों के साथ ये इंसाफ कराया जा रहा है तो मेरे साथ क्या होगा, अब मुझे भी देना पड़ेगा बदला। जिसका तो अल्लाह पे ईमान होता वो तो हर वक्त ये देखता रहता मेरा अल्लाह खुश हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो तो उसको दिखाता रहता अल्लाह तूने देख लिया ना मैंने ये करा, अल्लाह मुझे इसका बदला चाहिए। और जो ईमान ही नहीं है वो सोचते हैं कि पता नहीं मिलना भी है कि नहीं मिलना, इसीलिए यहाँ पे उम्मीदें लगाते हैं। वह इन तकु हसनतन युदाइफा, और अगर तुम करते अगर हो नेकी, अगर नेकी कोई लेकर आता है युदाइफा वो दुगना करता है। अल्लाह ये है अल्लाह का अदल, ये जो पीछे है ना ये कि अल्लाह ताला जुल्म नहीं करता ये है अदल। और अब जो मैं पढ़ रही हूँ वह इन तकु हसनतन युदाइफा ये है अल्लाह ताला का कानूने रहमत, ये है कानूने रहमत। होना तो ये चाहिए कि आपने एक नेकी की तो आपको एक ही अजर मिला, लेकिन युदाइफा वो दुगना करते देता है। वह युति मिल्ला दुनहु अजर नजीमा, और दुगना ही नहीं सिर्फ करता अपने पास से अजरे अजीम दे देता है, अजरे अजीम। आप एक करते हैं अल्लाह ताला का वादा है कि दुनिया में 10 और आखरत में 70 गुना करके देगा, और इससे भी ज्यादा का 2 लाख की भी बात आती है, 20 लाख की भी बात आती है हदीस में, बेहिसाब अजर की भी बात आती है। और वो आपने आयत तो पढ़ ही ली थी सूरह बकरा में कि एक एक जो हब्बा एक दाने से कितनी है 7 बालियां निकली, और हर बाली के ऊपर 100 दाने, तो कितने हो गए एक दाने से 700 हो गए, 700 की तो वहां पे भी एग्जाम्पल आ जाती है। तो अल्लाह ताला अजरे अजीम कैसे देगा जन्नत की सूरत में, जन्नत तो किसी तुम्हारे काम की कीमत नहीं बन सकती, इतना वो मल्टीप्लाई कर देगा अजर को कि एक खजूर किसी ने दी होगी उसके इखलास पे डिपेंड करता है, अल्लाह उसको उहद पहाड़ के बराबर कर देगा। तो तुम दे के तो देखो, तुम डरते क्यों हो। فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا। अल्लाह अकबर, ये आयत स्पेसिफिकली बी का जो है ना ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, का फकैफा तो किस तरह होगा क्या हाल होगा वो उस दिन जब इंसान ये यहाँ पे रियाकारियां करता है, यहाँ पे दिखावे करता है, ईमान है नहीं दिल के अंदर अल्लाह पे और आखरत पे। तुम करके तो देखो अल्लाह कहता है तुम्हें मैं कितनी गुनाह दे दूंगा, तुम दे के तो देखो अल्लाह के रास्ते में। क्या वो दिन होगा, क्या वो दिन होगा जिस दिन हम लाएंगे मिन कुल्ली उम्मतिन हर उम्मत में से शहीद भी शहीद एक गवाह, और वो गवाह कौन होगा उसका नबी गवाह दे होगा। क्या गवाही देगा वो ये गवाही देगा कि अल्लाह मेरे मेरे ऊपर जो आपने काम सुपुर्द किया था ना, मुझे जो जिम्मेदारी दी थी अल्लाह मैंने वो जिम्मेदारी पूरी कर दी। क्या काम था उनके जिम्मे कि आप हक को पहुंचा दें, आप दीन को पहुंचा दें। वो कहेंगे अल्लाह हमने इनको पहुंचा दिया था। आगे से उम्मतें क्या कहेंगी, वो कहेंगे हमने तो हमें तो कोई नहीं किसी ने बताया। अब वो क्या कहें, आप देखें जो पकड़ा जाए तो चोर भी कहता है मैंने तो नहीं चोरी की, झूठ बोलने वाला कहता मैंने तो नहीं झूठ बोला मैं तो सच ही बोल रहा था। उम्मतें क्या कहेंगी, हमें तो नहीं पता, हम तो बिल्कुल इसको जानते ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो नहीं किसी ने बताया कि अल्लाह की फरमाबरदारी क्या है, ईमान क्या है, आखरत क्या, हमें तो नहीं बिल्कुल पता। अब कौन इसका फैसला करे बताएं, कौन करेगा फैसला इसका, कौन कहेगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। अल्लाह ताला ने अदालत उस दिन कायम करनी है, और अदालतों में हालांकि अल्लाह को हर चीज का इल्म है, अल्लाह ने हुज्जत तमाम करनी है। उस वक्त नबी नबियों के ऊपर गवाही देंगे नबी अलैहिस्सलाम, और कहेंगे ये नबी सच्चे हैं। जैसे नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आता है उनकी कौम कह देगी इन्होंने तो हमें कुछ बताया नहीं, 950 साल वो तबलीग करते गए, तो कैसे नबी अलैहिस्सलाम गवाही देंगे, वो तो उस दिन नहीं थे मौजूद जिस वक्त नूह अलैहिस्सलाम तबलीग कर रहे थे। ये कुरान के जरिए है, कुरान में सूरह नूह देखें कि वो नूह अलैहिस्सलाम करते हैं अल्लाह ताला मैंने तो वो दिन और रात तबलीग की है। तो ये जो कुरान है इसकी बेस पर उम्मते मुस्लिमा भी गवाही देगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गवाही देंगे। व जिना बिक अला उलाई शहीदा, और लाएंगे हम आपको ऊपर उन लोगों के गवाह बनाकर, ये हा उलाई से मुराद आपकी उम्मत है, आपकी उम्मत को, और फिर हा उलाई से मुराद वो सारे लोग भी हैं, सारी उम्मतें भी हैं, आप अपनी उम्मत के ऊपर भी गवाही देंगे और आप बाकी अंबिया के हक में गवाही देंगे। लेकिन यहाँ पे आला आया अगेंस्ट, अपनी उम्मत के अगेंस्ट और दूसरी उम्मतों के अगेंस्ट के ये झूठ कह रही हैं, इनके अंबिया ने इनको अंबिया के हक में गवाही और उन उम्मतों के खिलाफ, और हा उलाई यानी इस उम्मत के भी खिलाफ गवाही देंगे। क्या खिलाफ गवाही देंगे कि अल्लाह मैंने इनको पहुंचा दिया था। इसीलिए खुतबा हज्जतुल विदा के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें फरमाया था ना कि लोगों मैंने तुम्हें पहुंचा दिया, लोगों ने सब ने एक जुबानों के कहा कि हाँ आपने पहुंचा दिया, आपने उंगली आसमान की तरफ बुलंद करके फरमाया कि अल्लाहुम्मा अशहद अल्लाहुम्मा अशहद अल्लाहुम्मा अशहद, 3 दफा फरमाया अल्लाह तू गवाह है ना कि ये कह रहे हैं कि हमें हमें पहुंच गया, ये कह रहे हैं हमें पहुंच गया, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अंबिया की। तो एक दफा ऐसा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद की आवाज बड़ी खूबसूरत थी, बहुत प्यारा कुरान पढ़ते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि आप मुझे कुरान पढ़ के सुनाएं, कुरान सुनना भी नेकी होता है। तो उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, यही सूरह निसा पढ़नी शुरू कर दी। तो अच्छा पहले उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह मैं आपको क्या पढ़ के सुनाऊं, आप पे तो खुद कुरान उतरा है। तो आपने फरमाया नहीं, मेरा जी चाहता है कि मैं दूसरे से सुनूं, तो इसका मतलब इस कुरान सुनने की भी बरकात है। तो सूरह निसा की जब उन्होंने तिलावत शुरू कर दी और यहां तक पहुंचे इस आयत तक, तो आपने फरमाया बस कर दो बस कर दो। तो अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं मैंने नजर उठा के देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें आंसुओं से तर थी, इतना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे, इतने रोए कि दाढ़ी मुबारक भी और रुखसार भी तर हो गए थे। तो क्योंकि ये गवाही कि आप अपनी उम्मत के खिलाफ गवाही देंगे, ये बहुत बड़ी बात थी। ये ऐसे है जैसे आपको कोई कह दे कि आपके बच्चे के खिलाफ आपने गवाही देनी, तो आप अपने बच्चे के खिलाफ कैसे गवाही दें? आपने हक भी कहना, लेकिन आपने आपने गवाही देनी है कि मैंने अल्लाह इनको पहुंचा दिया था, भी जो इन्होंने करतूत किए हैं ये इनकी अपनी, इनके अपने करतूत हैं, ये इनकी अपनी गलतकारियां, मैंने तो इनको पहुंचा दिया था। ऐसा नहीं कि इनको पता नहीं था, क्योंकि वो लोग कहेंगे ना हमें नहीं पता था, एकदम इग्नोरेंस प्लीड करेंगे, हमें क्या पता, हमें हम क्या जाने, मतलब हम बरी उजिमा हो जाए, हमें ना कुछ कहा जाए, असल कसूर तो इनका है, इन्होंने ही नहीं हमें बताया। वो कहेंगे हमने तो बता दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान भी यहाँ पे पता चलती है कि सारी उम्मतों पे भी आपने गवाही दी और अपनी उम्मत पे भी आप गवाह होंगे, आपके ऊपर नहीं कोई गवाह लाया जाएगा, तो आप सब के ऊपर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इतने दुखी होते थे अपनी उम्मत के लिए कि रात रात भर खड़े होके दुआएं करते थे, अल्लाहुम्मा उम्मती अल्लाहुम्मा उम्मती अल्लाह मेरी उम्मत अल्लाह मेरी उम्मत। वह कितना आपको दुख है कि मैं अपनी उम्मत के लिए खड़ा होकर कहूंगा कि मैंने इनको पहुंचा दिया था, अब ये जाने और इनका काम जाने। इतने शफीक थे। यौमाइदिन यवद्दुल्लदीना कफरू, वो दिन जिस दिन चाहेंगे काफिर जिन्होंने कुफर किया वो उनकी दिली तमन्ना होगी, उनकी भी और किन की भी, वो आसा वो रसूल, और जिन्होंने रसूल की नाफरमानी की, जो लोग कहते हैं ना कि हाँ भाई हम कुरान को मानते हैं लेकिन हम हदीस को नहीं मानते, वो इस बात को कैसे जवाब देंगे? रसूल की नाफरमानी क्या है? हदीस को ना मानना, हदीस में जो बातें उनको इग्नोर करना। तो जिन्होंने कुफर किया और जिन्होंने रसूल की नाफरमानी की, वो इतनी उनकी विश होगी, उनकी दिली ख्वाहिश होगी, लऊ तुसव्वा बिहिमुल अर्थ, कि काश के बराबर कर दी जाए उन पर जमीन, वला यक्तुमून अल्लाह हदीसा, वो अल्लाह से कुछ छुपा नहीं सकेंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि अल्लाह हमने तो नहीं किया, पहले तो कसमें खाएंगे हमने तो किया ही नहीं, कोई शिर्क ही नहीं किया, हमने तो कोई नाफरमानी की नहीं है रसूलों की। लेकिन वो दिन ना 50,000 साल का है, किसी वक्त ये कहेंगे किसी वक्त कुछ कहेंगे, किसी वक्त कहेंगे कि हाँ हमने किया लेकिन वो फलाने हमें कह दिया, किसी वक्त कोई तरह के बहाने बनाएंगे, तो मुख्तलिफ मौकों पे मुख्तलिफ बातें करेंगे, लेकिन अल्लाह से वो कोई भी बात छुपा नहीं सकेंगे, चाहे वो कसमें खा खा के इनकार करें। दुनिया में झूठ बोलते हैं जो लोग, वो सोचते हैं हम वहां पे भी झूठ बोलते हैं, जैसे यहाँ पे झूठ बोलते हैं सोचते हैं हम मक्का मदीना में भी जाके लोग झूठ बोलते हैं, इसी तरह कयामत के दिन अल्लाह की अदालत में भी झूठ बोलेंगे, लेकिन वहां पे बच नहीं सकेंगे झूठ बोल के। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबू सलात वअंतुम सुकारा, ए ईमान वालों नमाज के करीब ना जाना जब तुम नशे की हालत में हो। ये वाला जो हुक्म है ना, ये हुक्म जो हमने सूरह बकरा में पहला हुक्म पढ़ा था, यस अलूना का निल खमरी वल मैसर, वो हुक्म पढ़ा था हमने, 219 आयत थी गालिबन, तो वहां पे शराब का नुकसान बताया गया था, और बताया गया था कि यानी ये बड़ा गुनाह है, इस्मुन कबीर है। तो कुछ लोग वहां पे बाज आ गए, फिर अल्लाह ताला ने एकदम शराब को हराम नहीं किया था, फिर ग्रेजुअली किया ना। दूसरा हुक्म ये आया है कि देखो नमाज के वक्त में तुमने जब नमाज पढ़नी है तो उस हालत में नहीं पढ़ सकते जिसमें तुम नशे में, शराब पी के नमाज नहीं पढ़ सकते, नशे में धुत तो पता ही नहीं कि तुम क्या बोल रहे हो। क्योंकि एक सहाबी खड़े हुए नमाज पढ़ाने के लिए सूरह काफिरून पढ़ी, आपको पता उसमें मिलते जुलते ऐसे आयतें आती हैं, तो उन्होंने कुछ का कुछ बोल दिया, तो फिर ये आयत उतरी कि अब आपने नशे की हालत में आप नमाज के करीब नहीं जा सकते। अब इससे बहुत सारे लोग रुक गए नशे से, शराब से, इसलिए क्योंकि नमाज तो 5 दफा दिन में पढ़नी है, तो कोई और ही टाइम होना चाहिए जिसमें शराब पी जाए। इसके बाद फिर तीसरा जो हुक्म आ गया वो तो फिर कतई हुक्म था, जो आगे इंशाअल्लाह ताला हम सूरह मायदा में पढ़ेंगे, फिर उसमें मुकम्मल तौर पे हराम हो गई नमाज, नशा हराम हो गया। और इसमें सिर्फ शराब नहीं है, और तो जिस तरह के भी नशे हैं जिसमें भी इंसान की अकल मारी जाए उसको पता ही ना हो, तो वो सारे इसके अंदर आ गए, सारी नशावर चीजों के ऊपर पाबंदी लगा दी गई। मगर ये वाला हिस्सा, अब इतना हिस्सा सिर्फ अब मनसूख है, इसलिए कि अब ये नहीं कोई कह सकता अच्छा मुझे कुरान में तो है कि नशे में नमाज के करीब ना जाओ, तो इसका मतलब नशा तो कर ही सकते हैं, बस नमाज के वक्त ना करें। नहीं, ये सेकेंड हुक्म है, उसके बाद थर्ड इसके बाद आया, हत्ता तालमु मा तकुलू, तो अभी इनको ये रुख्सत दे दी गई कि जब तुम नशे से निकलो, यानी नशा उस वक्त नहीं करना जब तक तुम, यानी नशा नमाज के करीब उस वक्त तक नहीं जाना, हत्ता तालमु, यहां तक कि तुम जान तो लो कि तुम पढ़ क्या रहे हो, तुम कह क्या रहे हो, यानी नमाज ऐसी हालत में ना पढ़ो कि तुम्हें पता ही ना हो कि तुम क्या कह रहे हो। तो और नशे में इंसान को नहीं पता चलता, तो रोक दिया गया मुसलमानों को। यहीं से उलमा ने फिर ये मसला निकाला है कि जब आपको पता ना हो, मसलन आपके ऊपर नींद का इतना गलबा है, इतना गलबा है कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि आप बोल क्या रहे हैं, तो फिर बेहतर है कि आप थोड़ी देर सो जाएं और फिर सो के उठ के नमाज पढ़े, क्योंकि अल्लाह ना करे आप बजाय अपने लिए बख्शिश मांगने के, ये ना हो कि अपने लिए कोई तबाही मांग ले। तो ये जरूरी है कि इंसान को पता हो कि वो क्या बोल रहा है। अब इसमें नशा चाहे शराब का हो, चाहे नींद का हो, और चाहे जिहालत का हो और गफलत का हो। बाज दफा जिहालत का भी नशा ऐसा होता है कि बाज लोगों को नमाज का पता ही नहीं कि वो पढ़ क्या रहे हैं, नमाज में क्या क्या रहे हैं, तो वो जिहालत ही है ना, जिहालत के अंदर वो भी एक नशा है। अब उसके अंदर वो क्या बोल रहे हैं कुछ नहीं पता, कुछ का कुछ कह रहे हैं और मीनिंग कहाँ से कहाँ बदल रहा है। इसी वजह से नमाज का मीनिंग जानना फर्ज है, लाजिम है, जैसे नमाज पढ़ना लाजिम है, इसलिए क्योंकि नमाज पढ़ना ही नहीं चाहिए ऐसी हालत में जिसमें इंसान को पता ना हो कि जो वो बोल रहा है उसमें। तो यहां से समझ आ गई कि वो वाली नमाजें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज में तुम्हारा हिस्सा उतना है जितना तुमने उसको समझ के पकड़ पढ़ा, यानी शऊर के साथ पढ़ा। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा इल्ला आबिरी सबीलिन को ब्रैकेट में कर दे, मैं आपको बाकी बता दे, किस किस वक्त ला तकरबु सलात है, किस किस वक्त नमाज के पास नहीं जाना। एक वक्त जिस वक्त तुम्हें नशा हो, जब तक कि तुम ये ना जान लो कि तुम क्या कह रहे हो। अब वहां यहाँ पे तो उस नशे की बात है जो शराब का है, अब बाकी आपको समझ आ गई कि कौन कौन से नशे हैं जिनके अंदर भी इंसान को पता नहीं होता कि वो क्या बोल रहा है, उस हालत में भी नमाज नहीं पढ़नी है। अब ये नहीं मतलब कि सो ही रहना है क्योंकि हमने आज ये सुन लिया तो फजर पे भी कजा कर लो, क्योंकि हमें तो बहुत नींद आ रही, अपनी जिंदगी भी ऐसी बनाएं कि आपको जब पता है कि फजर के लिए आपने उठना है, तो ये ना हो कि मैं उठूं तो उस वक्त मेरे पर नींद का ऐसा गलबा हो कि मुझे पता ना चले मैं क्या बोल रही, तो मैं अपना टाइमिंग ऐसे सेट करूं कि मैं उस वक्त तक अलर्ट हूं। इससे पता चलता है मुसलमान को जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए, उस वक्त वो एक्टिव हो, उसका ब्रेन चल रहा हो। बाज लोग फजर पे खड़े हैं उनको पता ही नहीं है, इतनी नींद आई भी क्योंकि रात को 2-3 बजे सोए हैं, तो वो बिल्कुल गलत है फिर। ठीक है, तो इस जो बंदा इस वजह से सोता है जल्दी कि मैं उस वक्त उठ के सही अल्लाह के आगे खड़ी हूँ, नमाज सही से पढ़ूं, शऊरी नमाज पढ़ूं, उसका सोना भी इबादत है, उसके सोना भी उसको अजर देगा। ठीक है, और जिन्होंने सीखा नहीं अभी तक नमाज का तर्जुमा, उनको नहीं पता वो क्या पढ़े, वो इस आयत को सुनने के बाद अब नमाज का तर्जुमा सीखें। ठीक है, वला जुनूबन हत्ता तगतसिलु, और ना ही जुम्बी यानी हालत जनाबत वाला ऐसा बंदा जिसने अपनी बीवी के साथ जिस्मानी ताल्लुक कायम किया हो, जिस्मानी ताल्लुक नहीं भी किया तो उसको कोई वेट ड्रीम आए हैं, उसको उसको इतलाम हो गया है, यानी चाहे वो औरत है चाहे वो मर्द है, लेकिन वो अब नापाकी की हालत में चला गया है, या हैज वाली भी, पीरियड वाली भी, वो भी हत्ता तगतसिलु, वो भी नमाज के करीब ना जाए, कब तक, जब तक गुसल ना करते। एक एक्सेप्शन है, वो अब मैं दोबारा अब ये पढ़ रही हूँ, इल्ला आबिरी सबीले, मगर वो जो उबूर करने वाला रास्ते को, यानी अगर मिसाल के तौर पे नमाज पढ़ने के लिए कोई मस्जिद जा रहा है, लेकिन अब ये जुम्बी शख्स जो है इसका मस्जिद में जाना अलाउड नहीं है, लेकिन ये मुसाफिर है क्योंकि रास्ते को उबूर करने वाला है, ये मस्जिद से गुजर के अपने घर जाता है, इसका रास्ता बनता है, तो अब ये गुजर सकता है, कोई किसी को बुलाना है, घर नहीं है तो चलो किसी को बुलाना है तो वो जाके बुलाएगा, नहीं तो कैसे लाएगा, या किसी को वहां से कोई चीज उठानी है, आपसे लसलम ने जताया हर जिला तलाना से फरमाया था कि मुझे चटाई दे दो मस्जिद से, तो उन्होंने फरमाया कि मैं हैज से हूं, तो आपने फरमाया हैज तुम्हारे हाथों में नहीं है, यानी तुम जाके मस्जिद से ला सकती हो, ठीक है। अच्छा अब अगर एक प्रॉब्लम हो जाए, अगर पानी ही नहीं है तो फिर गुसल क्या करेंगे, अब दो लोगों का समझ आ गई ना, ये आयत ये ना अब इसमें गुम हो जाए क्योंकि लंबी आयत है, दो लोग नमाज के करीब नहीं जाए, एक नशे वाला जब तक कि उसको समझ ना आ जाए, एक जुम्बी जब तक कि वो गुसल ना कर ले, ये जनाबत की हालत जो है ना ये हद से अकबर है, यानी इसमें गुसल जरूरी है, वजू से सिर्फ काम नहीं चलेगा। अब मसलन अगर पानी ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है पानी, यहाँ पे किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे गुसल आप कर ही नहीं सकते, वह इन कुन तुम मर्दा, अगर तुम बीमारी है, ऐसी बीमारी है कि अल्लाह ना करे अगर पानी इस्तेमाल कर लिया तो बीमारी बढ़ जाएगी या मर ही जाएगा, कोई हो सकता है ना इस तरह की हालत, आओ औला सफर, या आप सफर में, अब सफर में पानी मिलना मुश्किल है, यहाँ पे मैं आपको आज की एग्जाम्पल देती हूँ, आप मसलन 24 24 घंटे के सफर करते हैं, आप घर से निकले आपके पीरियड थे, अब आप रास्ते में आपने चेक किया आपके पीरियड खत्म हो चुके हैं, खत्म होने ही वाले थे, अब बिल्कुल साफ है, अब बिल्कुल क्लीन है, अब वहां पे क्या करें, एयरपोर्ट के क्या बाथरूम में शावर लेना शुरू कर दें, नमाज का टाइम भी होता जा रहा है और नमाजें पता नहीं कितनी गुजर जानी है आपको, वो ट्रांजिट में भी बिठाते हैं, पता नहीं एक पूरा दिन तो लग ही जाता है, 1 डेढ़ दिन का हमारे सफर हो जाते हैं बाज दफा, तो अब हम क्या करें फिर, वहां पे नहाएं क्या, वहां पे तो कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है, तो फिर क्या करें, अब ये इसका जवाब अभी हमें मिलेगा, तो पानी तो है लेकिन देर इज नो प्लेस, हम किधर जाएं, या आप गाड़ी में जा रहे हैं, आप गाड़ी में इतनी दूर के दिन और रात के आप सफर कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, अब उसके अंदर कोई रास्ते में होटल नहीं है, कोई रेस्ट एरिया, लेकिन वहां पे कोई बाथरूम ऐसा नहीं है जिसमें आप नहा सकें, तो अब क्या करें, औ जा अहद मिनकुम मिन अलगाइत, या तुम में से कोई जाए हाजत से आए, बाथरूम से होके आए, तो बाथरूम से आने के बाद गुसल तो ठीक है नहीं चाहिए, वुजू चाहिए, औ लामस्तुम उन्निसा, या छुओ तुम औरतों को छूना, मतलब यहाँ पे इशारा है किस तरफ, के औरतों के साथ ताल्लुक कायम किया, फलम तजिदु मान, फिर ना तुम पाओ पानी, एक तो मैंने वो आपको सिनेरियो बता दिया ना, अब एक ये भी सिनेरियो कि अब पानी नहीं है, आप सफर में हैं, पानी ही नहीं अवेलेबल, इतना सा पानी है कि आप वजू कर सकते हैं, नहाने का नहीं है, मरीज हैं आप नहीं कर सकते यूज, या बाथरूम से टॉयलेट से होके आए, या वजू तो खत्म हो गया, या औरतों को हाथ लगाया मतलब है कि उनके साथ जिस्मानी ताल्लुक किया है, अब पानी नहीं मिल रहा नहाने के लिए या वजू करने के लिए, बाथरूम के लिए तो आने के लिए आपको वजू चाहिए, तो ये हद से असगर है, फतयम्ममु, तो तयम्मम कर लो, किस चीज से तयम्मम करे, तयम्मम का असल मतलब होता है इरादा करना, सईदन तय्यबा, पाक मिट्टी से, पाक मिट्टी ले लो, उसको क्या करो, फमसा हो, फिर मसा कर लो, अब इस आयत से हमें पता चलता है कैसे तयम्मम करना है, मसा करो यानी उसके ऊपर हाथ आप रख के मले उसको, फिर कहाँ पे, वुजूहिकुम व आईदीकुम, पूरे वजू की जगहों पे नहीं मलने के, पैरों पे भी मल रहे हैं, मसा भी सर का कर रहे हैं, नहीं सिर्फ आपने उसको टैप किया अपने हाथों को मिट्टी के ऊपर, एक दफा टैप किया, फिर उसके बाद आपने उसको थोड़ा झाड़ लिया उसको, और फिर अपने चेहरे पर और हाथ पर मल लिया, तो यहाँ पे पहले किसका आया है, पहले चेहरे का और फिर हाथों का, आपको पता है वैसे वुजू में हम पहले हाथ धोते हैं फिर उसके बाद चेहरा धोते हैं, ठीक है, और हाथ भी सिर्फ हाथ, ये नहीं कि कौन ही होता काप लेकर जा रहे हैं, ये वुजू नहीं हो रहा सिर्फ तयम्मम हो रहा है, इससे पता चलता है तयम्मम वुजू के कायम मकाम भी है और गुसल के कायम मकाम, अगर आपको गुसल की जरूरत है तो उसके लिए भी आप तयम्मम कर सकते हैं, मसलन ऐसी जगह पे आप हैं, अगर आप घर से निकले पानी लेने के लिए कहीं गए, घर में पानी नहीं आ रहा, बहुत दफा पानी बंद हो जाता है, सिर्फ पीने का इतना सा पानी रह गया, आप नहा नहीं सकते या उसे वजू नहीं कर सकते, अगर बाहर निकले तो बाहर खतरा है, कोई जंग है, कोई दुश्मन है, कोई ऐसे है, कर्फ्यू लगा हुआ है, अल्लाह ना करे, तो ऐसी कोई चीजें हैं, तो आप तयम्मम करेंगे, आप अब तयमम फिर इस तरह से, या बीमार है, बाज बीमार ऐसे होते हैं उनकी बीमारी बढ़ जाती है, वो नहीं वजू वगैरह भी कर सकते इवन, तो तयमम वजू की जगह पे भी हो सकता है और गुसल की जगह पे भी, ये अल्लाह की तरफ से बड़ी मेहरबानी है इंसानों के लिए। अल्लाह का ना अफुवन गफूरा, वैसे तो तुम्हें पूरा वजू करना चाहिए था या नहाना चाहिए था, लेकिन अल्लाह माफ करने वाला बख्शने वाला, अल्लाह तुम्हारे लिए इसके से इसको ही काफी कर देता है। अच्छा अब जो यहां से है 44 से लेके 56 तक जो आयते हैं, ये अहले किताब को दावत इस्लाम दी जा रही है और इसमें इनको जरा सख्ती से इनको धमकाया भी जा रहा है। ये जो आयते हम अभी पढ़ने जा रहे हैं ना, ये असल में आपने पहले ये सारा कुछ सूरह बकरा में पढ़ा हुआ है, तो इसको मैं मुख्तसर नहीं गुजर जाऊंगी। अलम तरा इल्लदीना ऊतू नसीबम मिन अल किताब, क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो किताब का एक हिस्सा दिए गए। एक हिस्सा मतलब क्या, कुछ को तौरात मिली तो उन्होंने इंजील का इनकार कर दिया, इंजील मिली तो तौरात का इनकार कर दिया, या फिर एक हिस्सा मिलने का मतलब यह है बाज हिस्से पे ईमान लाए और बाज पे ईमान ही नहीं लेकर आए, जिनका उनको अमल करना मुश्किल लगता था, पढ़ते तो सारे ही थे मगर जो आसान लगती थी उसको कर लेते थे, जो नहीं लगती थी अफतुमिनूना बिबादिल किताबी तक रूना बिबाद, पहले आया ना तुम बाज के किताब के बाज हिस्से पर ईमान रखते हो बाज को छोड़ देते हो, तो ये इनको जो हिस्सा मिला वो ही हिस्सा है जिस जो उनके अमल में आया, जिसको उन्होंने छोड़ दिया उसको उसका हिस्सा ही नहीं कहा गया, चाहे उसको पढ़ते भी थे समझते भी थे सीखते भी थे उसकी क्लासें भी लेते होंगे जो मर्जी करते हैं, मगर अमल नहीं किया तो कहा ऊतू नसीबम मिनल किताब, पूरी किताब नहीं जो दिए गए एक हिस्सा किताब का, यश्तरून अद्दलाला था, वो खरीदते हैं गुमराही, वो हालांकि किताब का इल्म जानते हैं फिर भी प्रेफर किसको करते हैं, गुमराही को, यानी हिदायत मिल रही है लेकिन वो अपने लिए क्या चीज चूज करते हैं कि हमने इसी गुमराही में रहना है जिसमें है, इसी शिर्क में इसी गुमराही में। हिदायत की किताब कुरान आ गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हिदायत का पैगाम लेके, लेकिन उन्होंने उसी के ऊपर रहना गवारा किया। वह युरीदूना अन तुदिल्लु सबील, और वो ये चाहते हैं कि तुम भी भटक जाओ रास्ते से, तुम भी सही रास्ते पे ना रहो, वो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही चाहते हैं, तुम भी अपनी किताब की पाबंदी ना करो। आज देख ले इन्होंने खुद भी अपनी किताब छोड़ी भी है, अपनी शरीयत को एक तरफ डाला हुआ है और गुमराही के रास्ते पे चल रहे हैं, और मुसलमानों को भी यही चाहते हैं, उनके अंदर भी वही चीजें कहते हैं कि तुम भी इसी रास्ते पे चलो जो हम चल रहे हैं, और मुसलमान अंधे धुंध उनके रास्ते पे चल रहे हैं, वो नहीं चाहते कि आप अपने इस दीन को फॉलो करें, इतनी हठधर्मी है कि खुद भी गलत करना, हम तो डूबे हैं सनम तुझको भी ले डूबेंगे, वो वाली बात है कि हम खुद भी नहीं करेंगे तुम्हें भी नहीं करने देंगे, तुम भी ना करो, वल्लाहु आलमु बिअदाइकुम, अल्लाह जानता है तुम्हारे दुश्मनों को, यानी ये जो तुम्हारे से दुश्मनी रखते हैं अल्लाह ताला को पता है जो इनके दिलों में है, और ये अमूमी तौर पे भी इस आयत को देख लें तो आप देखें कि जितने हमारे दुश्मन है ना, हम बड़ा डरते रहते हैं, हाय हमारे दुश्मन फलां हमसे मुखालफत रखता है, वो तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा, नहीं तो आप छोड़ दें, अल्लाह जानता है आपके दुश्मनों को, वकफा बिल्लाही वलिया वकफा बिल्लाही नसीरा, हसबी अल्लाह निमल वकील पढ़ा था ना, मेरे अल्लाह काफी है, तो काफी अल्लाह दोस्त और काफी अल्लाह मददगार, तुम क्यों डरते हो इतना कि वो मेरे से दुश्मनी करके मुझे पता नहीं क्या नुकसान पहुंचा देगा, वो मेरे खिलाफ चाल चलेगा, वो कोई साजिशें करेगा, उनको अल्लाह के सपुर्द करो, क्योंकि जब इंसान इसी चीज में पड़ जाता है ना कि हाय वो ना मेरा कुछ बिगाड़ दे वो ना मेरा कुछ कर दे, तो वो तो कुछ काम कर ही नहीं सकता, तो सारा वक्त ही नहीं सोचो में लगा रहेगा। मूसा अलैहि सलाम ने क्या फरमाया था, इन्ना माया रब्बी सयहदीनी, मेरे साथ मेरा रब है ना वो मुझे रास्ता दिखाएगा, अल्लाह पर फिर इतना भरोसा किया करें, फला गालिबा लकुम, अगर अल्लाह तुम्हारा मददगार है तो कोई तुम पे गलबा नहीं पा सकता, तो असल बात यह है अल्लाह को अपना दोस्त बनाना, अल्लाह को अपना मददगार बनाना, वो कैसे हो सकता है जब हम उसका कहना माने तब वो हमारा दोस्त और मददगार बनता है, और अगर मुसलमान अल्लाह ही के साथ दोस्ती ना रखें और ये समझें कि हम कहते रहते हैं हम ईमान वाले अल्लाह हमारी मदद क्यों नहीं करता, आप तो नाम के मुसलमान रह गए, अल्लाह का को कहना तो आप मानते नहीं, तो कैसे आप आपकी मदद करें। मिनल्लदीना हादू, अब यहाँ पे देखें यहूदियों का फिर स्पेसिफिक बताया गया, और असल में मुसलमानों को ये बताया जा रहा है कि देखो तुम ऐसे ना करना, यहूदी वो लोग थे जो पढ़े लिखे लोग थे, जो किताब का इल्म रखते थे, बड़े नॉलेजेबल थे, तो उन्होंने लेकिन क्या किया उसके बाद अपने नॉलेज से, क्या ये उन सब के लिए जो पढ़े लिखे हैं इस उम्मत के, कि वो इससे सीखें समझें, यू हर रिफून अल कलीमा अम्मा वादिया ही, वो क्या करते थे तहरीफ करते थे चेंजेस कर देते थे, या तो लफ्ज ही बदल देते थे तौरात के, या उसके माने बदल देते थे। आज कुरान के लफ्ज तो कोई नहीं बदल सकता, अल्लाह ने हिफाजत का जिम्मा लिया, लेकिन माने इसके भी बदल रहे हैं, तहरीफें करते हैं, एडिटिंग कर देते हैं, अपने मनमाने माने दे देते हैं। वो यकूलूना, और वो कहते हैं समेना व आसईना, वो कहते हैं हमने सुना लेकिन मानना हमने कोई नहीं है, मानेंगे हम अपनी, आप जितना मर्जी हमें बताते रहे, हमने नहीं माननी, ये कहते थे। वस्मा गैर मुस्माइन, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में उनका क्या रवैया होता था। अब ये चाहे जुबान से कह रहे हैं, चाहे दिल में कह रहे हैं, लेकिन आज भी मुसलमानों में भी ऐसे लोग हैं ना, हम सुन लेंगे, करनी हमने वही है जो हमारी अपनी मर्जी है, मानना हमने नहीं है। और देख लें, कुरान पढ़ पढ़ के रखे हुए हैं, सर्टिफिकेट ले लेके रखे हुए हैं, शील्डें सजाई हुई हैं, लेकिन माननी हमने अपनी मर्जी करनी है, अल्लाह की नहीं मान के देनी। तो ये हाल है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसों में भी ऐसे लोग होते थे। इससे हमें पता चलता है कि ये भी एक बेअदबी है। वस्मा गैरा मुस्माइन, और उससे भी बड़ी बेअदबी सुन ले, कहते थे सुनो और ना सुनवाए जाओ। ये भी देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में कि कोई सुनो कह रहा है तो चुपके से कह देते थे तुम्हारी कोई भी ना सुने, तंज करते थे, आपको सुनाई ना दे, गोया एक तरह की बद्दुआ भी देते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपको सुने ही ना, और उसको तो चुपके से कह के ना फिर खुश भी होते थे कि देखा पता तो इनको चला नहीं, बड़े बनते हैं कि मैं अल्लाह का नबी हूं, तो देखो इनको तो पता ही नहीं चला हमने ये कहा। वराइना लयम भी अलसिनतिहिम, और राइना कहते थे अपने जुबान को मोड़ते हुए, राइना कह देते थे मेरा चरवाहा। तो बेअदबी ये भी, वो कहते ना इतने बेअदब थे तो उनको क्या इल्म मिलना था। इमाम गजाली फरमाते हैं कि इल्म जो होता है ना आजी से आता है और फरमा बरदारी से हासिल होता है, ऐसे नहीं इल्म हासिल हो जाता। वतानन फिद दीन, और ताना देते हुए, ताना जनी करते हुए दीन में, यानी ऐब लगाते थे दीन में कि इनको तो पता कुछ चल ही नहीं रहा, ये तो अपने आप को नबी कहते हैं, मजाक उड़ाते थे इस तरह। वलो अन्नहुम कालू समियाना व अतअना, अगर काश ये लोग कहते, या वाकई का ये लोग कहते हमने सुन लिया हमने मान लिया, वस्मा और सुनो, वंदुरना और देखिए हमारी तरफ, इंस्टेड ऑफ सेइंग राइना अगर वंदुरना कहते, जैसे आपको पता है सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने राइना कहने से फिर मना फरमा दिया मुसलमानों को भी कि ये इनको बहाना मिल रहा है, फिर तो लकाना खैरन लहुम व अकवम, तो ज्यादा इनके लिए बेहतर होता और ज्यादा दुरुस्त बात होती अगर ये कहते तो, लेकिन इन्होंने ये वही बेअदबी करने को चूज किया। तो इल्म की कदर करनी चाहिए, इल्म की मजलिसों के आदाब होते हैं, उनको मलहूज़े खातिर रखना चाहिए, तब इल्म मिलता है, तब हिदायत मिलती है। लाकिन लानहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम, लेकिन लानत कर दी अल्लाह ने उनके कुफर की वजह से, यानी इनको अपनी रहमत से अल्लाह ने दूर कर दिया। फला युमिनूना इल्ला कलीला, तो वो ईमान नहीं लाएंगे मगर थोड़ा ही, और वाकई बहुत ही कहा गया आप इनसे तवक्को ना ज्यादा एक्सपेक्ट ना रखो, क्योंकि ये नहीं ईमान लाएंगे, और वाकई बहुत ही कम ईमान लाए थे यहूदियों में से, और आज भी दुनिया में यहूदी सबसे कम है जो ईमान लाते हैं, क्योंकि इल्म इनके पास है और था, मगर जब इंसान ढीठ ही हो जाए तो फिर इल्म क्या करेगा, उसको तो नहीं इल्म कुछ बदल सकता ना। या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताब, ए वो लोगों जो दिए गए हो किताब, अब डरावा इनको दिया जा रहा है, दावत भी है और धमकी भी है, आमिनू ईमान ले आओ, बीमा नज़्ज़लना मुसद्दिकन लिमा मअकुम, किस चीज के ऊपर ईमान ले आओ, बीमा साथ उसके जो उस पर, यानी जो नज़लना उतारी हमने, मुसद्दिकन लिमा मअकुम, जो तस्दीक करने वाली है उसकी जो तुम्हारे पास है, यानी तो तुम्हारे पास तौरात और इंजील है उसकी तो तस्दीक आती है इस कुरान में, यानी इस कुरान पे ईमान ले आओ, नज़लना हमने उतारा, यानी कुरान अल्लाह ने उतारा ना, वो तस्दीक करता है, वो तो वेरीफाई करता है कि वो भी अल्लाह की तरफ से ही किताबें थी, तो इस कुरान पे ईमान ले आओ, यानी इस पैगंबर को मान लो, इस कुरान को मान लो, मिन कबली, ये है अब धमकी, इससे पहले के अन्नतमीसा वजूहन, के अल्लाह बिगाड़ दे तुम्हारे चेहरों को, और चेहरों पे क्या होते हैं ये कान आंखें, ये तो मिटा ही दे अल्लाह, तो फिर कहाँ से हिदायत पाओगे, इन्हीं से तो हिदायत, यही तो हिदायत की जराए हैं जहां से हिदायत मिल सकती है, कुछ इंसान देखेगा कुछ सुनेगा, अल्लाह ने अगर इससे पहले के अल्लाह इनको मिटा दे, فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، یا اللہ تعالیٰ کیا کرے پھر ہم موڑ دیں، پھیر دیں ان کی پیٹھوں پر، ان چہروں کو، ان کو مٹا دے اللہ، اور ان چہروں کو جیسے پیچھے آپ کا سر ہے اور سامنے آپ کا چہرہ ہے نا، تو چہرے کو پیچھے کر دیا جائے اور سر کو آگے کر دیا جائے. تم اللہ سے بھاگتے ہو نا، پیٹھ موڑتے ہو نا، تو اللہ اسی طرح نہ کر دے کہ تمہارے چہرے ہی پیچھے کر دے. او نلعنہم کما لعن اصحاب السبت، یا اللہ لانت کر دے ان پر جیسے کہ اللہ نے لانت کی اصحاب سبت پہ. آپ کو پتا ہے نا ان کا واقعہ ہفتے والوں کا، جنہوں نے مچھلیاں پکڑی تھی ہفتے کے دن، ہم نے سورہ بقرہ میں ساری ڈیٹیل پڑھی تھی. ان کی طرح ان کے اوپر لانت کر دے، یعنی جیسے ان کو خنزیر بنا دیا تھا، سوری بندر بنا دیا تھا، اس طرح تو ان کو بھی بندر بنا دیا جائے. تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے نا جب بندر بنائے گئے. استغفر اللہ، تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر بھی لانت ہو جائے. اس آیت کو سن کے حضرت قاب احبار جو تھے، وہ بہت بڑے یہودی عالم تھے، وہ ایمان لے کر آئے تھے. قاب احبار کی تو ایک دعا ہے، وہ میں پڑھتی بھی ہوں روزانہ، تو ان کو یاد کرتی ہوں کہ وہ بڑے بہت بڑے عالم تھے. حضرت عمر کے زمانے میں نا انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. وہ یمن میں رہتے تھے، تو وہاں سے انہوں نے بیت المقدس کا ارادہ کیا. جا رہے تھے تو راستے میں مدینہ سے گزرتے ہوئے گئے، تو حضرت عمر امیر المومنین تھے، ان کے پاس گئے، ان کو فرمایا کہ آپ ایمان لے آئے ہیں، اسلام قبول کر لیں. انہوں نے کہا نہیں، تم نے اپنے قرآن میں پڑھا نہیں ہے؟ سورہ جمعہ میں آتا ہے نا کہ یہ یہودی وہ ہیں کہ ایسی کوئی بات آتی کہ تورات کا علم وغیرہ اس کا بار جن لوگوں پہ ڈالا گیا، تورات کے جو حامل ہیں تو تورات کا علم ان کو دیا گیا، پھر انہوں نے اس کا بھار نہیں اٹھایا، تو ان کی مثال وہاں پہ گدھے جیسی دی گئی ہے، کہ ان کی مثال گدھے جیسی ہے جس کے اوپر بڑی بڑی کتابیں لاد دی جائیں، گدھے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا اٹھایا ہوا. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میں بھی تورات کا علم لے کے اور اس کے بعد اس طرح سے اس کو مطلب اس کے اوپر نہ چلوں اور اس کو ایک سائڈ پہ کر دوں، تو میں تو اس گدھے کی طرح ہو گیا، تو میں تو نہیں پھر یہ آپ کے اسلام تو نہیں میں لا سکتا، میں تو حامل تورات ہوں، میں تو تورات کو کیسے ایک سائڈ پہ رکھ سکتا ہوں، تو آپ کی کتاب میں لکھا ہوا نا کہ وہ گدھے کی طرح ہی ہے. پھر تو اب حضرت عمر خاموش ہو گئے، پھر ان کی بات چھپ کر کے چلے گئے. تو یہ جب یہاں سے ہند سے ایک جگہ ہے آگے، یہ وہاں پہنچے، تو وہاں پہ ایک آدمی اتنے درد بھرے انداز میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. وہ جب وہ اس آیت پہ پہنچا ہے نا کہ اس سے پہلے کہ اللہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دے اور تمہارے چہروں کو پیٹھوں کی طرف پھیر دے اور تمہارے پر ایسے لانت کر دے جیسے اصحاب صف پہ کی، تو اسی وقت پکار اٹھے، میرے رب میں ایمان لیا ہے، میرے رب میں ایمان لیا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس آیت کی طرح میں ہی اس آیت پہ میں ہی فٹ نہ ہو جاؤں، اس کا مصداق میں ہی نہ بن جاؤں. تو بس اللہ نے جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرنا ہوتا ہے اس کو اللہ سنوا بھی دیتا ہے کہیں، اور اس کے دل میں بھی بات گھر کر جاتی ہے. پھر یہ واپس گئے یمن، جا کے اپنی فیملی کو لے کر آئے مدینہ، اور آ کے ساروں نے ایمان قبول کیا. ان سے بہت ساری روایات ہیں. تو کعبہ بھار احبار ان کا نام ہے، حبر تھے نا، بہت بڑے عالم تھے، سبحان اللہ. تو آپ بھی دیکھیں نا، جیسے آپ کو کہیں اللہ نے سنوا دیا ہوگا کہ یہ کلاس ہے، کہیں آپ جا رہے، کہیں آپ بیٹھے، کسی مجلس میں آپ تھے، آپ نے سوچا بھی نہیں تھا، کہاں سے اللہ نے کسی کے ذریعے سنوا دی کوئی بات. تو جس کو اللہ نے لائن پہ لانا ہوتا ہے، کہیں اللہ اس کے لیے راستہ بنا ہی دیتا ہے. اللہ اکبر. وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے نا وہ ہو کے رہنے والا ہے. جس کا ارادہ، جس چیز کا اللہ کر دیتا ہے، تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے یہ سارے کام کرنے. تم باز آ جاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تمہارے ساتھ یہ کرے. اللہ اکبر. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. تلاوت سنیے ان آیات کی.
ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت جاءت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولاً